अब आगे पढ़ने लगे कनूते नाजिला, इसका फर्क समझ लेंगे ना तो फिर आप वाजे समझेंगे। दुआए कनूते नाजिला, ये क्या होता है? कुफार के साथ जंग हो रही हो, जैसे मक्का से आने के बाद मदीना में मुसलमानों की असल में कैफियत जो थी वो मक्का वालों से जंग की थी। दारुल हर्ब बना हुआ था उस वक्त मक्का, ठीक है। मुसलमानों पर आमदा मुसीबत, यानी कोई तूफान आ गया, सैलाब आ गया, कोई वबा आ गई, यानी कोई मुसीबत आई, क्लेमिटी अल्लाह की तरफ से, कोई आसमानी जमीनी आफत, ठीक है, दो जगह। तीसरी गलबाए कुफार, यानी काफिर किसी जगह गालिब आ रहे हैं, मुसलमानों को परसिक्यूट किया जा रहा है, उन पे ऑब्सेशन है और ऑपरेशन है और जो भी उनको दबाया जा रहा है। इन तीन वक्तों में से दुआए कनूत पढ़ी जा सकती है। ऐसी दुआ को कनूते नाजिला कहते हैं। नाजिला का लफ्ज़ नाजिल से, नजल नजूल वही लफ्ज़ है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो फजर की नमाज में रकू के बाद कनूत करते और ये दुआ पढ़ते। इधर रुक के सोचिएगा, दुआए कनूत वितर में, वितर क्या है? रात की आखिरी इबादत। लेकिन कनूते नाजिला जो तीन कैफियत में से एक पे हो सकती है जो ऊपर देखी है, लेकिन ये फजर की नमाज के दौरान रुकू के बाद होती है। उम्मीद है समझ गए। और अगर आप कभी मक्का में गए और ये दुआ हुई हो तो भी आपको पता है, या फिर आप जिस शहर मुल्क में रहते हैं वहाँ अगर कोई अरब मस्जिद है तो वहाँ भी ये मामूल में है, बल्कि चीज़ हमारे देसी कल्चर में अमूमन ये नहीं होती, ठीक है। दुआ बड़ी प्यारी है। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल्लिफ बैन कुलूबिहिम वस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुविका व अदुविहिम। اللهم ملئن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. हमें और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दे और इनके दिलों में उल्फत डाल दे, इनकी आपस में इस्लाह फरमा दे, अपने और इनके दुश्मनों के खिलाफ इनकी मदद फरमा। इलाही अहले किताब के कुफार पर अपनी रहमत से दूरी कर, यानी लानत फरमा, जो तेरी राह से रोकते हैं, तेरे रसूलों को झुठलाते हैं और तेरे दोस्तों से लड़ते हैं, यानी अल्लाह वाले। इलाही इनके दरमियान फूट डाल दे, इनके कदम डगमगा दे और इन पर अपना वो अजाब नाजिल फरमा जो तू मुजरिम कौम से नहीं टालता। जी, इसके दलाइल लीजिएगा, सुनन अल कुबरा, बहकी की किताब है ये। टॉपिक है सला, जिल 2, 2-1 और 2-11 नंबर, और हदीस है 3143, और सही रिवायत है, स्ट्रॉन्ग है, और रिवायत वही सही होती जो स्ट्रॉन्ग रिवायत हो। अल्लाह के नबी सल्लम जब कुफार पर बददुआ या मुसलमानों के लिए नेक दुआ का इरादा फरमाते तो आखिरी रकत के रकू के बाद समय अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना वलकल हम कहने के बाद ऊंची आवाज से दुआ फरमाते। ये भी रिवायत ले लीजिए, बुखारी 4559 और 4560 और सही मुस्लिम में 675, ठीक है। तो ये अल्लाह के नबी का एक अमल हमें दिख गया, और फजर की नमाज में होता है आखिरी रकत का जो रुकू होता है, यानी दूसरी रकत का जो बेसिकली रुकू है, ऊंची आवाज से पढ़ते थे। कनूते नाजला में आपने अपने दोनों हाथ उठाए, कैसे? जैसे दुआ मांगते वक्त हाथ उठाए जाते हैं। ये मुस्तद अहमद की रिवायत है, 137 जिल 3 और हदीस है 12402, और बुहारी मुस्लिम में भी इस शर्त पर ये भी फिर सही रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक माह तक पांचों नमाजों में रुकू के बाद कनूते नाजला पढ़ी और सहाबा किराम आपके पीछे आमीन कहते थे। ये भी दलील ले लीजिएगा, अबू दाऊद की रिवायत है 1443, हाकिम अल मुस्तदरिक जिल्द 1 225 226 और इब्ने खुजैमा में 618 है। अब ये भी अमल आपको हदीस से मिल गया कि आप ये कहते थे पांच बार, सहाबा आपके पीछे आमीन कहते थे, दुआ की तरह हाथ उठाए गए, ये दुआ मांग ली गई और उसके बाद आमीन कह दिया गया, और फिर उसके बाद वो सजदे में जाकर रकत को पूरा करते हैं। अब इस सारे कनूत के दोनों आमाल को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, जो बात, जो दुआ, जो काम अल्लाह के नबी ने जब जहां जितना भी किया اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہوگی وہی چیز آپ کے میرے لیے حجت ہے. اور اس کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جتنا سنت کے قریب رہ کر کام کریں گے اتنا ہی آپ کا میرا کام قبول ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دعائیں مانگیے, پڑھیے نہیں, سیکھیے اور مانگیے. دعائے قنوت کے بارے میں جو سیکھا اس میں جو بات تھی پہلی وہ یہ تھی کہ رکوع سے پہلے کیا جانا زیادہ بہتر ہے, ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے جائز ہے, مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح سے کفار کے ساتھ جنگ ہو یا مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت آئی ہو یا کفار کا کوئی غلبہ ہو, کسی جگہ حملہ ہو گیا کچھ بھی, تو اس موقع پہ دعائے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے, اور یہ فجر کی فرض نماز کے دوسرے رکوع میں پڑھی جائے گی یعنی اس کے بعد, اور اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض امام اونچی پڑھتے ہیں بعض آہستہ پڑھتے ہیں. تو یہ تو تھے قنوت کی باتیں, اب اسی ٹاپک میں بھی کنٹینیو ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک تراویح تہجد قیام کا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان کیا تھا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے تراویح آپ کیسے پڑھتے تھے, یعنی آپ یہ جو ٹاپک ہے اس میں تراویح کے مسائل آئیں گے. قیام رمضان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قیام رمضان کی التزامن, التزام کہتے ہیں چپک جانا, لزیمہ سے نا, یہ جو الزام لگتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے یعنی چپک جاؤ, التزامن رغبت دلاتے اور فرماتے تھے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نیت دیکھ لیجئے, ایمان اور احتساب یہ دو لفظوں کی شرط ہے. दुआ भी बहुत प्यारी है और हदीस भी। रिवायत है ये बुखारी में 2009 और सही मुस्लिम में 759। नीयत ठीक होनी चाहिए। ईमान क्या होता है सबको पता है। किस बात पे ईमान? अल्लाह पर ईमान और इसके अजर पर ईमान। और एहतसाब क्या होता है? अपना एहतसाब करना हसीबा या सुबू से, यानी कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे सवाब होगा, यानी बेसिकली अपने ऊपर नज़रें रखते हुए सवाब की नियत करना, तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह माफ़ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रातें बाद जमात क़ियाम रमदान किया। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे। शुरू ने आपने हमारे साथ महीने में से एक दिन भी क़ियाम ना किया, यहाँ तक कि 23वीं यानी 23rd नाइट को आपने हमें क़ियाम रमदान कराया। फिर आपने 24वीं रात छोड़कर 25वीं रात को और फिर 26वीं रात छोड़कर 27वीं शब को अपने अहले खाना और अपनी ख़वातीन समेत सब लोगों को जमा करके क़ियाम किया और फरमाया, जो शख्स इमाम के साथ इशा की नमाज़ अदा करता है इसके लिए पूरी रात का क़ियाम लिखा जाता है। ये रिवायत है ने अबू दाऊद की 1375 और तिरमिज़ी में रिवायत है 806 और इसी तरह और भी रेफरेंस हैं इब्न खुज़ैमा 2206। तो अल्लाह के नबी ने 30 रातें नहीं सिर्फ 3 रातें जमात से कराई, क्योंकि देखिए तरावी तो नफिल है ना, तो नफाफिल तो अमूमन तन्हाई में अकेले में इख्तसाब के साथ किए जाते हैं। अगर अल्लाह के नबी पूरे 30 दिन करा देते तो फ़र्ज़ हो जाता, यानी फिर तरावी पढ़ते ही सिर्फ जमात के साथ, ठीक है। तो लिहाजा इसमें फ्लैक्सीबल छोड़ दिया, रोज़ पढ़ लें अजर होगा जैसे कि अब होता था पिछले सालों में भी और इंशाल्लाह अगले साल भी होगा। बाकी कोई घर में खुद पढ़ता है तो भी इंशाल्लाह उसमें खैर है, ठीक है। और पूरी रात का क़याम। फिर इसके बाद आपने 3 रातें जब गुजर गईं तो फरमाया, मैंने देखा है कि तुम्हारा मामूल बराबर कायम है तो मुझे ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं तुम पर यह नमाज फ़र्ज कर दी जाए, इसलिए मैं घर से नहीं निकला। चुनाचे तुम अपने अपने घरों में रमज़ान की रातों का क़याम करो। आदमी की नफिल नमाज घर में अफजल होती है। जी ये बुखारी की रिवायत है 731 और मुस्लिम में है 781। तो क्या पता चला कि इसमें रिया नहीं होगी, दिखावा नहीं होगा और घर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अजर होगा। हज़रत उमर ने एक ही इमाम के पीछे बाजमात क़ियाम रमज़ान दोबारा शुरू कराया, मगर ये भी फरमाया कि रात का आखिरी हिस्सा जिसमें लोग सो जाते हैं रात के इब्तदाई हिस्से से बेहतर है जिसमें लोग क़ियाम करते हैं, ठीक है। ये रिवायत ले लीजिए जी बुखारी की 2010, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शब क़ियाम रमज़ान कराने के बाद लोगों से फरमाया, तुम अपने घरों में पढ़ा करो। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी यही तरीका जारी रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इब्तदाई दौर में भी इसी पर अमल होता रहा, यानी लोग घरों में पढ़ते रहे। ये बात शायद आपको ना बताओ पहले। खैर फिर हज़रत उमर ने एक इमाम के पीछे पढ़ने का तरीका जो रसूलुल्लाह से साबित था और बवजह खौफ फ़रज़ियत आपने पूरे रमज़ान इख्तियार नहीं किया, इसको जारी कर दिया। समझिएगा गोया कि 3 दिन करवा कर अल्लाह के नबी उसके जायज़ और उसकी सही होने की दलील दे गए। आप अगर पूरा पढ़ाते तो फिर हमेशा ही फ़र्ज़ हो जाता, तो अल्लाह के नबी के दौर में तो बस 3 दिन हुआ, लेकिन बाद में फिर हज़रत उमर ने इस सुन्नत को जारी किया। और ये रिवायत है बुखारी की 2009 और मुस्लिम 174 और 759, ठीक है। तो फिर तब से यानी हर रात में होने लगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि आखिरी हिस्सा बेहतर, ऐसे पता चलता है कि लेट नाइट तरावी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि एक वजाहत है कि इस तरीके पर सहाबे कराम रदी अल्लाह अन्हुम पे और इनके बाद सारी उम्मत का अमल रहा, और जिस चीज़ को सहाबे कराम की मजमू तायद हासिल हो जाए वो बिदत नहीं हुआ करती। ज़रा बहुत सारे सहाबा थे हज़रत उमर के दौर में तो उनमें से किसी ने भी इस पर एतराज़ नहीं किया, क्योंकि सहाबा तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ज़रा सा कोई ऐसा काम देखते जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया या मना किया तो वो उस पर सवाल करते थे। तो लिहाजा जैसे पीछे भी जिक्र किया कि हदीस के बाद जिस चीज़ का मुकाम है वो असर है, पहले कुरान फिर हदीस फिर असर, आसार जिसकी जमाती है, तो सहाबा के अमल से ये चीज़ साबित हो गई। वैसे भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं, जिनकी सुन्नत इख्तियार करने का हुक्म खुद नबी सल्लम दे गए। ये रिवायत आपने कई जगह सुनी होगी। अबू दाऊद की रिवायत है 4607, सही सनद है। इसी तरह तिर्मिजी में 2678 है। तो क्या पता चला कि सुन्नत का इजरा हजरत उमर के दौर में हुआ और फिर हर रोज होने लगी तरावी, ये मुराद है। ठीक है, और आपने खुद तो कहा कि हजरत उमर की भी और चारों खुलफाए राशिदीन की पैरवी करो। लिहाजा जब किसी खलीफा राशिद की सुन्नत को दीगर सहाबा कराम कबूल कर लें तो वह बाकी उम्मत के लिए हुज्जत बन जाती है। इस लिहाज से पूरे रमज़ान में क़ियामुल्लैल का बाजमात इहतमाम बिदत नहीं है। दरअसल हजरत उमर ने इसे जो बिदत कहा है तो इससे मुराद बिदत के लोगवी मानी है, लेकिन अफसोस के बाज़ लोग अपनी बिदात को जायज़ ठहराने के लिए सहाबा कराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को बेदती साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी बाज़ लोग जो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं ना, तो हज़रत उमर के इस अमल को बेदत कहलाते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, आमीन। दरअसल बेदत वो काम होता है जिसकी असल और दलील सुन्नत रसूल में मौजूद ना हो, जबकि तरावीह बाजमात की दलील सुन्नत में मौजूद है। रहा ये मसला कि आपने पूरे महीने में इसे बाजमात अदा नहीं किया, तो इसमें आपको ये खदशा लाहक था कि कहीं इसे फ़र्ज़ करार दे दिया जाए, और अब ये खदशा आपकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया, इसलिए फिर पूरा महीना बाजमात तरावी का अहतमाम बिला शुबा मशरू है। देखिए, एक होती इल्लत, वजह बीमारी, जब इल्लत ख़त्म हो जाए ना तो हुक्म बदल जाता है। वही का सिलसिला नबी सल्लम के साथ ख़त्म, ये तो सब मानते हैं ना, हमारा मुत्तफिक का फैसला है और अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे, आपके साथ ही वही का सिलसिला खत्म क़यामत तक के लिए। ठीक है, और एक औरत भी अल्लाह के नबी के दौर में ये बात जानती थी, बच्चा बच्चा ये बात जानता था। अब वो ख़त्म हो गया, तो वो जो 3 दिन पढ़ाने में एक किल्लत थी वो ख़त्म हो गई ना, कि कहीं फ़र्ज़ ना कर दी जाए। तो जब फ़र्ज़ होने का डर ख़त्म हो गया तो फिर हज़रत उमर ने उसको हर रात करवाने का अहतमाम कर दिया। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो पहली बात का खुलासा जो अभी पढ़ी कि रमज़ान के क़याम, जिसको हम तरावी भी कहते हैं, और इसी तरह से वो तरावी भी कहलाता है और तहज्जुद भी है, ये 30 रातों या 29 रातों में किया जा सकता है, और अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ 3 रातें किया, क्योंकि अगर ज़्यादा करते तो हो सकता है फ़र्ज़ हो जाता। लेकिन बाद में हज़रत उमर को जबकि ये अंदेशा नहीं था, तो उन्होंने फिर इसको पूरे महीने पर करवाया। अगला सवाल जो अब आपके सामने है वो क्या है कि क्या तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है, या अगर तरावियां पढ़ चुके तो अब तहज्जुद भी पढ़ें? हमारे कल्चर में अमूमन लोग कहते हैं मैंने रमज़ान में तहज्जुद शुरू की। कैसे? रात को ईशा पढ़ते, ईशा के बाद तरावी पढ़ते, और अमूमन लोग 20 तरावी भी पढ़ते हैं, फिर फजर से पहले जब उठते हैं तो उस वक़्त तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो लिखिएगा, ये एक मुग़लता है। क्या तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है? जी हाँ, एक ही नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27वीं रमज़ानुल मुबारक को इतना तवील क़याम किया कि सहाबा कराम रदी अल्लाहुम को ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं सहरी ही फौत ना हो जाए। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 806 और अबू दाऊद में 1375। अब ज़रा से इसको नोट करिएगा, इतना तवील क़याम के सारी रात ही लग गई, सहरी के करीब आ गए। मिसाल है, क्या पता चला कि माह रमज़ान में तहज्जुद और क़ियामुल्लैल अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नमाज है। ये बात सिरे से मनकूल ही नहीं कि आपने रमज़ानुल मुबारक की किसी रात को तहज्जुद और क़ियाम रमज़ान का अलग अलग इहतमाम किया हो। चलिए, दूसरा सवाल भी सॉर्ट आउट हो गया कि तरावी ही तहज्जुद है। देखिए, इसको इस तरह समझिए, आम तौर पे तहज्जुद फजर से पहले पढ़ी जाती है। इन नाशियतल्लैल ही अशद्द वत्तम वक्वा मुकीला। रमज़ान की रातों में वो वक्त मसरूफियत का वक्त होता है, क्योंकि सहरी बनाना, पकाना, वो भी आसान है जो खिलाना और जगाना और फिर मूड देखना। ये जो माएँ उनसे पूछिए या बीवियों से पूछिए, ये नहीं फिक्र होती कि पकाना मुश्किल है, ये मुश्किल होती है इसको खिलाना कैसे है, सबका मूड अलग है। अब उस वक्त अगर तहज्जुद पढ़ रहे होते तो क्या होता, खुद ही देख लीजिए, सहरी रह जाती। तो अल्लाह ने रुख्सत दी, सहूलत दी, अपने प्यारे प्यारे बंदों को इस बात से कि देखो मेरी ही इबादत कर रहे हो, मैं और तुम, हमारे बीच का मामला है, किसी को बीच में बोलने की क्या जरूरत। चलो तुम बाद में पढ़ते थे, पहले पढ़ लिया करो और उस वक्त तुम घर वालों को खुश करो। यानी ये अल्लाह और बंदे का प्यार है, जो आपकी केयर करता है ना, वो अपना बोझ नहीं डालता आपको, कहता इट्स ओके, इट्स बिटवीन मी एंड यू, आई विल टेक केयर, गो अहेड। ये बात थी, हमें इससे मुगलता लगा, ये भी और वो भी का। तो एक वक्त है, पूरी रात में अल्लाह के नबी ने क्या पढ़ा, ये अब सुन लीजिए, अगला टॉपिक देख लें। क्या में रमज़ान चूँकि तहज्जुद ही है, तहज्जुद अल्लाह के नबी ने जो पढ़ी वो 11 रकत थी, तो क्या मुल्लैल या तरावी या तहज्जुद, इसकी वो रकात जो अल्लाह के नबी ने पढ़ी वो 11 रकत थी। अब आप कहेंगे हम तो 11 नहीं, हम तो या 8 पढ़ते हैं या 20 पढ़ते हैं। तो आइए जरा अब इसके दलाल सुनिए। अबू सलमा रहमहुल्ला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, यानी कैसे पढ़ते थे। सस्पेंस भी होता है, सीखने का मादा भी था, तो सहाबा किराम ये सवाल करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, रमज़ान और गैर रमज़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज बिलआमूम यानी यूजुअली कॉमनली आमतौर पे 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। ये रिवायत है जी बुखारी की 1147 और मुस्लिम 738। एक बात क्लियर है, और ये हमारे यहाँ बहुत नोन है 11 रकत, जिसमें आप देख लीजिए कि 8 नफिल होते थे और 3 अक्सर लोग वितरों के नाम पे पढ़ते हैं, जब ऑल टुगेदर किया जाए तो 10 रकत और 1 वितर। ठीक है, बस साबित हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 रात जो नमाज पढ़ाई थी वो 11 रकात ही थी। हज़रत साहिब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हज़रत उमर ने उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो से और तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो से हुक्म दिया कि लोगों को 11 रकात क्याम रमदान पढ़ाएं। ये है जी मौता इमाम मालिक की रिवायत 256। तो आप अभी तक की रिवायतों से क्या समझे कि अल्लाह के नबी के दौर में जो फिगर सामने था, जो फैक्ट था, वो 11 रकत ही था मैक्सिमम। कभी कोई 2 नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लिए, कोई इस्तखारा किया उसकी नियत से या कोई और वजह, लेकिन मामूल 11 रकत थी, जिसमें से 8 नफिल और 3 वितर या 10 नफिल और 1 वितर। अल्लाह के नबी की जिंदगी में 20 रकत का सवाल या कोई क्वेश्चन या कोई वजूद ही नहीं था। इतनी बात पे चलें, अब आगे चलें कि फिर 20 रकत कहाँ से हुई, इसको पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने मदीने के कारियों को 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबू तालिब, उबई बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो मजमाइन से 20 रकात क़ियामुल्लैल की तमाम रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। अब आप देखिए कि इसमें कोई बहस की बात नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं, आज इस वजह से मस्जिदें अलग हो गईं। पहली बात एक याद रखिए, दीन का असल मसला बर्दाश्त का मसला, बाकी सब चीज़ें एक साइड पे कीजिए। दीन कहता है मुसलमान मुसलमान को बर्दाश्त करे, दूसरे की राय का एहतराम करे, बात सबकी सुने और जिस बात की दलील मजबूत लगे उसको मान ले। इतनी सी बात है, नफिल है फर्ज तो नहीं। किसी एक ने ये कभी कहा कि ईशा के फर्ज 4 नहीं 6 हैं 8 हैं 2 हैं, तो नफिलों की बात है, इस पे क्यों परेशान होते हैं। पहले आप इस असूल को समझ लें, ओके, वजह भी समझ आ गई कि सहरी में खाना पकाने का वक्त है और अपनी ज़रूरियात से फारिग हो, वही पहले पढ़ ली, ठीक है, इसमें हरज क्या है। अल्लाह के नबी ने रमज़ान में ये पहले पढ़ा दी, बाद में पढ़ाए, पूरी रात में दो दो करके पढ़ते रहे, नो प्रॉब्लम। हमारा मसला ये है कि हम एक रटे रटाए और एक रस्मी और रिवाजी दीन में पैदा हुए हैं, हिलना नहीं चाहते अपनी जगह से, और बास दफा सिर्फ इसलिए हम फर्ज नमाज छोड़ देते हैं कि जब तक मैं फर्जों के साथ तरावी ना पढ़ूं तो मैं तो पढ़ती नहीं, हो ही नहीं सकती, तो लिहाजा अब चूंकि मैं मसरूफ हूं और मैं सारा इकट्ठा नहीं कर सकती, अब मैं ईशा की नमाज लेट करते करते बास दफा सोने से पहले फिर बिल्कुल ही एक अधूरी सी नमाज है, नमाज नींद के अंदर पड़ी नहीं, ये हुक्म होता है। ठीक है, 11 रकात तक बात काफी थी। हजरत उमर ने जो 11 से 20 हुई ना, एक तो देखिए आज हमारे कल्चर में बड़े मारूफ मसला है बीस तरावी का मसला। मैं इन चीज़ों में आमतौर पे नहीं आती, आपको अंदाज़ा ही है। आप चूंकि आप बुक पढ़ रहे हैं नमाज़े नबी, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको हदीसें बताऊं, अल्लाह के नबी का अमल बताऊं। ना तो किसी स्कूल ऑफ थॉट को प्रोटेक्ट करना और ना किसी के अगेंस्ट है, वो भी अपने ये भी अपने, जो मर्जी कीजिए, हैं सारे अपने मुसलमान हैं, नमाज ही पढ़ते हैं ना, इसलिए किसी से चूंकि एफिलिएशन नहीं है। हदीस और सुन्नत से प्यार है तो बात ख़त्म हो गई। आप दूसरों को ना बताएं, आप जो मर्ज़ी करें, हुक्म यही है। नफिल के बता के करते हैं, छुपा के करने चाहिए। और जब 11 रकत ही खूबसूरती से पढ़ लेंगे ना, तो याद रखिए कि शबीने के नाम पे आप 200 रकत नहीं पढ़ेंगे और पूरा कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम हेड काउंट पे आ गए, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे आ गए। क्वालिटी डिक्रीज ठीक है, क्वांटिटी ना बिगड़े। लोग उन मस्जिदों को ढूंढते हैं जिधर 3 मिनट की एक तरावी, अल्लाह अकबर सूरह फातिहा, दो तीन आयतें पढ़ी अल्लाह अकबर, लोग उसमें जाते हैं। एक ही पारा पढ़ना है ना, 20 तरावियों में जो पारा पढ़ेगा उसकी रकत छोटी छोटी होंगी। वही पारा जब आप 8 या 11 रकतों में पढ़ते हैं तो वो ज़रा ठहर ठहर के पढ़ेंगे, गौर व फिक्र ज़्यादा होगा, पारा उतना ही होता है, बस ये कह लीजिए कि बीच में ब्रेक ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा बहस ना करें, आपका जिस पे शरह सदर है वो करते रहिए, इसमें कोई हीलो हुज्जत और बहस की बात नहीं, सुन्नत यही है। आप जो भी करें पूरी जिम्मेदारी से कर लीजिए, दैट्स इट। अब कोई मुझसे अगर ये सवाल करे 20 होती हैं फिर जिन मस्जिदों में होती हैं, फिर वो इमाम पढ़ाते हैं, फिर वहां हम जाएं तो हमारी होती, ये सवाल ना कीजिएगा। आप कहीं जाते हैं वहां 20 से आपको लगता है 11 पढ़नी, अब 11 पढ़ के आ जाइए। थोड़ा लेट हो गए या बीच में थक गए तो बीच में थोड़ी रोक के पढ़ लीजिए। आप कहते हैं जी मैंने 20 ही पढ़नी है, बिल फर्ज मुहाल, सोच के बात कर रही हूँ। देखिए तरावियों की नीयत से तो वो 11 ही होंगी, क़ियामुल लैल तो 11 ही है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी करें, तो इन बातों में बहुत ज़्यादा नहीं जाने की ज़रूरत होती। दुआ करें कि अल्लाह में सुन्नत के करीब रखें। ये बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप किसी जगह के करीब करीब रहते हैं ना, तो बहुत उम्मीद होती है कि आप आ जाओगे उसके पास। जितना सुन्नत से दूर होंगे, दीन की रूह से दूर हो जाएंगे। और आज यही हुआ, फिर एक वक्त आया कि नस्बतें प्यारी होने लगी और फिर अल्लाह के नबी की साफ हदीस पेश की जाती है, लोग इनकार करते हैं। ये कभी ना करें। ये जितनी हदीसें आपको दी है ना, कोई स्कूल ऑफ थॉट इन हदीसों का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सही रिवायत है। तो पिक फ्रॉम दैट वट एवर यू हैव द बेस्ट वन। आप जो 20 रकात आ ली हैं वो ज़यीफ़ हैं, अब आप कहेंगे वो ज़यीफ़ क्यों हैं, इसलिए कि वो 20 हैं? नहीं, पढ़ लीजिए। अगर कोई एक भी रिवायत मिल जाती है, बिलफर्ज आगे वक्त में आ सकती हैं, अगर कोई एक भी रिवायत मिल जाती है ना कि ये अल्लाह के नबी 20 रकते पढ़ते थे, यकीन करें मैं तो कल से शुरू कर दूंगी 20। मिसाल दे रही हूँ, हमारा असल इम्तिहान सुन्नत पे है। देखिए किबला बदलवाया था ना अल्लाह ने सहाबे कराम के थ्रू और मदीना में आने के बाद, ये इम्तिहान था। मक्का के सहाबा जो थे मक्का से आने वाले, वो तो कुर्बानियां दे चुके, घर तक दे आए, माल छोड़ दिए, सारा छोड़ दिया। आप में से कोई छोड़ते जहाँ कोठियाँ और जायदादें और बंगले और बिजनेस हों, अब्दुलरहमान की तरह खाली हाथ आता है? बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब मदीना में आने के बाद लोग शामिल हुए, न्यू मुस्लिम्स, और जिनकी नस्बतें यहूद की वजह से बैतुल मकदस की तरफ थी, ये उनका टेस्ट था। तो मैं आज के दौर में इसको बिल्कुल किबले की तब्दीली से जोड़ती हूँ कि क्या तुम्हें रिवायात ज़्यादा प्यारी हैं या अल्लाह के नबी का अमल ज़्यादा प्यारा है। इसके बाद भी कोई बहस की ज़रूरत नहीं, कोई झगड़े की बात नहीं, ठीक है ना? आप किसी को हलाल हराम का फतवा दे सकते हैं ना कुछ और, ये जरूरत से बड़ी भी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़े उलमा का काम है, मुफ्तीज़ हैं, शयूख हैं, उनको करने दीजिए। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ आपकी तरह, हमारा इल्म की तलब का काम है, इल्म लेना भी और देना भी है, बस ख़त्म। हदीस के ऊपर रुक के कहते हैं अल्लाह ताला इससे ज़्यादा हमें नहीं पता, अगर कोई बात सही है तो वो भी सामने ले आ। फिर आप देखिए कि सहरी और नमाज फजर का दरमियानी वक्फा ये कितना होना चाहिए, इसको थोड़ा सा समझेंगे, वो इशू वहाँ पूरा हुआ। हज़रत ज़ैद बिन साबित से रिवायत है, अन्नहुम तसख्खरु मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ामू इला सलाती क़ुल्तु कम बैनहुमा, क़ाला क़द्रु 50 औ 60 यानी आयतन। क्या कहा कि कितना वक्त होता था सहरी खाने में और तहज्जुद में, तो जवाब सुन लीजिए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी खाई, फिर नमाज़ फजर के लिए खड़े हो गए और नमाज़ पढ़ी। हज़रत अनस कहते हैं, मैंने पूछा कि सहरी और नमाज दोनों में कितना वक्फ़ा था, तो उन्होंने बताया कि सहरी से फरागत पाने और नमाज शुरू करने के माबैन वक्फ़ा इतना था जितनी देर में कोई शख्स कुरान हकीम की 50 या 60 आयतें पढ़ लेता। ये रिवायत है जी बुखारी की 575। मुराद क्या है कि सहरी का वक्त फजर के वक्त से मुत्तसिल है, ये मुराद है। आपको शायद थोड़ा सा मुगलता हो जाए तो मैं क्लियर कर दूं कि सहरी आखिरी वक्त पे खानी चाहिए। कुछ लोग एहतियात के तकाजे में पहले ही खाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ वाजे हुई। क्या मुलैल तरावी तहज्जुद का टॉपिक यहाँ पूरा हुआ?